एक और प्रश्न साइड में धीरे से आ जाता है उसके, कि जब मुनि महाराज स्नान नहीं करते, उनके स्नान व्रत होता है, तो देखो तो भगवान कैसे स्नान कर सकते हैं, ऐसा एक लॉजिक था। लेकिन ध्यान रखें, न मुनि महाराज अभिषेक करते हैं, न साक्षात जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक हो सकता है, ये तो जिन बिंब का अभिषेक है। और पंच परमेष्ठी के अगर बिंब बनाए जाएं, मूर्ति नहीं बनाई जा रही, बिंब, मिरर इमेज, हू बहु वैसा ही, ओरिजिनल नहीं है। लेकिन पंच परमेष्ठी की अगर बिंब बनाए जाएं और उनकी प्रतिष्ठा हो जाए, तब उनके ऊपर जल की धारा छोड़ना यह निषिद्ध नहीं है। मुनि महाराज के ऊपर जल की धारा नहीं छोड़ी जाएगी, और साक्षात समोशरण में विराजे हुए जिनेन्द्र भगवान के ऊपर भी जल की धारा नहीं छोड़ी जाएगी। इसीलिए तो जबकि सौधर में इंद्र चाहे तो 160 नहीं 170 जगहों पर अगर एक साथ जिनेन्द्र भगवान के समोशरण लगे हों ढाई द्वीप में, तो सब समोशरण में जाए और वहां दिव्य ध्वनि सुने। लेकिन जब अष्टान का पर्व आता है तो दिव्य ध्वनि छोड़ देता है, वो कहता चलो नंदीश्वर चलेंगे, ठाट वाट से भगवान का अभिषेक करेंगे। अरे साक्षात जिनेन्द्र भगवान के चरणों में जाकर के बैठते ज्यादा लाभ मिलता? कहते नहीं, जिनबिंब के दर्शन से मुझे सम्यक दर्शन हो सकता है, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन अकेले से नहीं हो सकता। समोशरण में बैठे हुए साक्षात जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से लिखा हो सम्यक दर्शन नहीं, जिनबिंब दंशनी न, जिनेन्द्र भगवान के बिंब के दर्शन करने से और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जिनबिंब पर अभिषेक और जिनबिंब की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हमारे हाथ में ये बहुत बड़े आध्यात्मिक प्रयोग हैं अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठाने के लिए, इसलिए हम इनका लाभ लें। हमने पिछले दिनों इसीलिए इस विचार को अपने मन में बनाया है कि हम समझ लें कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें हमें कितना और परिवर्तन करके उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। ये हमने सोच करके इस प्रक्रिया को समझा है, हम इसके लाभ लेंगे। ये हम विचार करें कि हमें कैसे लाभ लेना है, और वर्ष में एक बार लेना है, महीने में एक बार लेना है, 15 दिन में एक बार लेना है, या रोज रोज ऐसा लाभ लेना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम चाहें तो फ्री हैं हम कि जिस दिन भी हम चाहें इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं भगवान के सम्मुख जाकर के, और जो प्रक्रिया है उस अभिषेक की प्रक्रिया से अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं भगवान के सामने। इसके बाद जब अभिषेक हो चुका है तब भगवान के सामने हम उनके गुणगान करते हुए कुछ ना कुछ द्रव्य भेंट करते हैं, चढ़ाते हैं, अपने लोभ का विसर्जन करते हैं। श्रावक के जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज उसे पीड़ा देने वाली है तो उसका अपना लोभ है। जितना जितना श्रावक के जीवन में संतोष आता चला जाता है, जितना जितना वो निर्लोभ होता चला जाता है, उसका जीवन उतना ही पवित्र होता है। इसलिए पवित्रता के लिए यह प्रक्रिया रखी गई कि किसी तरह से तो अपने लोभ को हटाओ। हमारा अहंकार इतना अधिक है मनुष्य जीवन का कि वो कहीं झुकना नहीं चाहता, तो हमने इसलिए एक प्रक्रिया रखी कि झुको, ये मंदिर है, ये भगवान है, ये उनका बिंब है, यहां झुको। और इतना ही नहीं, अपने लोभ को छोड़ो, अपने मान को भी छोड़ो। मनुष्य मान के साथ पैदा होता है, देव लोग लोभ के साथ पैदा होते हैं, नारकी क्रोध के साथ पैदा होते हैं, तिरंच मायाचारी के साथ पैदा होते हैं। चारों कषायें चारों ने बांट ली हैं, मनुष्य के हाथ में मान कषाय आई है। सो पूरे जीवन उसी अहंकार से और फूला फूला यहां से वहां घूमता रहता है। अब उसके लिए क्या करें, कैसे उसके जीवन को निर्मल बनाएं? तो आचार्य भगवंत उस पर कृपा करके कहते हैं कि एक जगह बनाई हमने तुम्हारे लिए, वहां झुको, गुणगान करो। जिंदगी भर अपने कानों से अपने ही गुणगान सुनना पसंद किया है, अब दूसरे का गुणगान भी अपने कानों से सुनो और अपने मुख से अपनी ही प्रशंसा करी है, अब दूसरे की करो। भगवान की प्रशंसा करो अपने मुख से और कानों से, भगवान की प्रशंसा सुनो। छोड़ो अपनी प्रशंसा करने और अपनी प्रशंसा सुनने का ये जो रोग है, वो थोड़ी देर को तो छोड़ो, आधे